नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे लगभग 34,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। इनसे प्राकृतिक गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क संपर्क और चिकित्सा क्षेत्र को लाभ होगा।
आज शुरू की जाने वाली परियोजनाओं में अकेले समुद्र क्षेत्र की परियोजनाओं का मूल्य 7,800 करोड़ से अधिक है। इनमें मुंबई में एक नया क्रूज टर्मिनल, कोलकाता और पारादीप जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर नई कंटेनर सुविधाएं और कंडला के दीनदयाल बंदरगाह पर ग्रीन बायो मेथेनॉल प्लांट जैसी प्रमुख परियोजनाएं शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात के लिए 26,300 करोड़ से अधिक की कई नई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें छारा बंदरगाह पर एलएनजी टर्मिनल जैसे नए ऊर्जा और 70 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग की 4 मार्गीय परियोजना शामिल है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को ईरान में नौकरी के वायदे या प्रस्ताव के झांसे में न आने की सलाह दी है। हाल में ऐसे कई मामले हुए हैं जिनमें भारतीय नागरिकों को ईरान में रोजगार देने या किसी अन्य देश में नौकरी के लिए भेजे जाने का प्रलोभन दिया गया। ईरान पहुंचने पर इन लोगों का आपराधिक गिरोह ने अपहरण कर लिया और उनकी रिहाई के लिए परिवार से फिरौती मांगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान सरकार भारतीयों को केवल पर्यटन वीजा पर प्रवेश की अनुमति देती है। नौकरी या किसी अन्य उद्देश्य के लिए ईरान में वीजा मुक्त प्रवेश का वायदा करने वाले एजेंट आपराधिक गिरोहों से जुड़े हो सकते हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौते के बाद भारत ने सऊदी अरब से द्विपक्षीय संबंधों में आपसी हित और संवेदनशीलता का ध्यान रखने की अपील की है। भारत ने हर तरह के आतंकवाद से निपटने के लिए विश्व समुदाय से अपने प्रयास तेज करने का अनुरोध किया है। भारत ने कहा है कि दुनिया आतंकवाद, पाकिस्तान और सेना के बीच के गठजोड़ से परिचित है। पाकिस्तान में आतंकी गुटों के ताजा वीडियो के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह की घटनाएं स्थिति को अधिक चिंताजनक बनाती हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन सहित हर बहुपक्षीय मंच के दस्तावेज में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से सख्ती से निपटने पर जोर दिया जाता रहा है। इन दस्तावेज में सीमा पार आतंकवाद की भी चर्चा होती रही है। इस बीच लश्कर ए तैयबा के एक आतंकवादी ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के मुरीदके में मरकज तैयबा स्थित आतंकवादी समूह के मुख्यालय को भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर में नष्ट कर दिया था। यह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विश्व मंच पर पाकिस्तान के झूठे दावों के लिए एक और झटका है। लश्कर ए तैयबा के कमांडर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में माना कि ऑपरेशन सिंदूर में नष्ट हुए मुरीद के आतंकी शिविर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। उसने ये भी स्वीकार किया कि इस शिविर में कई आतंकियों को प्रशिक्षित किया गया था। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन किसी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटा सकता। आयोग ने कहा कि कर्नाटक के अलंद में भी किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से नहीं हटाया गया। आयोग ने बताया कि 2023 में नाम हटाने के संदिग्ध प्रयास के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आयोग के अनुसार अलंद में नाम हटाने के लिए 6,018 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से केवल 24 ही सही पाए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तकनीकी क्षेत्र में विदेशियों की संख्या सीमित करने के लिए H-1B वीजा पर $1,00,000 का वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की है। इससे ऐसे वीजा पर दूसरे देशों से कर्मियों को लाने की इच्छुक कंपनियों को हर साल प्रति वीजा $1,00,000 का भुगतान करना होगा। अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी जिन कर्मचारियों को लाना चाह रही है वे वास्तव में अत्यधिक कुशल हैं और अमरीकी कर्मचारी उनका स्थान नहीं ले सकते। एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने अंतिम ग्रुप ए मैच में कल ओमान को 21 रन से हराया। अबुधाबी में भारत के 188 रन के जवाब में ओमान की टीम 167 रन ही बना सकी। इसी मैच में अर्शदीप सिंह पुरुषों के T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। एशिया कप के सुपर फोर चरण की शुरुआत आज दुबई में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मुकाबले से हो रही है। ये मैच रात 8 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।